हाँ नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बेहद अहम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन की गहराई में उतर रहे हैं। शीर्षक है गायत्री उपासना सफल एवं सार्थक कैसे बने।
जी
हमारा मकसद है पूज्य गुरुदेव के विचारों से ये समझना कि भाई सच्ची उपासना आखिर है क्या। ये सिर्फ पूजा पाठ रस्मों रिवाज से तो कहीं ज्यादा गहरी चीज है।
बिल्कुल।
और सबसे जरूरी बात, इसे जीवन में सचमुच मतलब वाकई असरदार फलदायी कैसे बनाया जाए। तो आइए इस ज्ञानवर्धक स्रोत का सार समझने की कोशिश करते हैं।
जी जरूर।
तो पूज्य गुरुदेव गायत्री को त्रिपदा बताते हैं ना, तीन पैरों वाला कल्पवृक्ष, पारस और अमृत।
हाँ त्रिपदा।
शुरुआत कल्पवृक्ष से करते हैं। इसे अक्सर जोड़ा जाता है सांसारिक इच्छाओं से, खासकर धन संपत्ति की पूर्ति से।
हाँ ये आम धारणा है। और पूज्य गुरुदेव पौराणिक उदाहरण देते भी हैं, जैसे विभीषण, सुग्रीव, सुदामा के। पर मुझे लगता है कि जो आधुनिक उदाहरण है, बाबा आमटे, हीरालाल शास्त्री, गांधी जी, वो बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, यहाँ कुंजी सिर्फ धन मांगना नहीं है। इन लोगों ने ऐसा नहीं कि बैठकर धन मांगा, बल्कि उनके कर्म जो किसी ऊंचे लक्ष्य से जुड़े थे, सेवा हो, राष्ट्र निर्माण हो,
हाँ।
उन्हीं कर्मों ने उनके नेक कामों के लिए जरूरी संसाधन खींचे। ये असल में उपासना के माध्यम से खुद को एक योग्य माध्यम, एक पात्र बनाने की बात है।
ये सुनना दिलचस्प है। मतलब उपासना स्वयं कर्म करने की प्रेरणा और दिशा देती है, ऐसा नहीं कि बस बैठकर मांग लिया।
बिल्कुल सही पकड़ा। मांगने से ज्यादा ये आपको उस योग्य बनाने पर जोर देती है कि चीजें खुद आपकी ओर आएं, आपके सत्कर्मों के लिए।
अच्छा, और फिर ये पारस, ये परिवर्तन वाला पहलू क्या है?
हाँ पारस, ये व्यक्ति के आमूलचूल परिवर्तन का प्रतीक है, मतलब पूरी तरह बदल जाना। पूज्य गुरुदेव बहुत सशक्त उदाहरण देते हैं इसके।
जैसे?
जैसे स्वामी केशवानंद, जो आप सोचिए निरक्षरता से उठकर महान शिक्षाविद बने।
हाँ।
या शिवाजी, जिन्होंने एक सामान्य पृष्ठभूमि से साम्राज्य खड़ा किया।
हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य का भी उदाहरण आता है।
जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें चाणक्य ने गढ़ा। या फिर स्वामी विवेकानंद, जो नौकरी खोजने निकले थे और विश्व विचारक बन गए।
कमाल है।
तो इन सब में समान बात क्या थी? ये बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं था, ये किसी न किसी आध्यात्मिक शक्ति या मार्गदर्शन के संपर्क से जगी एक आंतरिक क्रांति थी। जैसे चाणक्य का साथ, समर्थ गुरु रामदास का, रामकृष्ण परमहंस का।
समझ गया।
यही असली पारस स्पर्श है जो चरित्र और क्षमताओं को जड़ से बदल देता है।
ये पारस वाला पहलू तो सचमुच बहुत प्रेरणा देता है कि कैसे सही मार्गदर्शन, सही संपर्क से साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है।
बिल्कुल।
तो हमने देखा कल्पवृक्ष सांसारिक पूर्ति से जुड़ा है, पारस व्यक्तिगत परिवर्तन से। अब ये तीसरा पहलू अमृत, पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये शारीरिक अमरता नहीं है, तो फिर इसका गहरा अर्थ क्या है?
यकीनन, अमृत का मतलब यहाँ ये नहीं कि शरीर हमेशा जिंदा रहेगा, बल्कि ये है अपने कर्मों और आदर्शों से एक स्थायी विरासत छोड़ जाना।
अच्छा, एक लेगेसी की तरह।
हाँ, एक तरह से शाश्वत सत्य से जुड़ जाना, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम आज भी सत्य के लिए अमर है, या भगीरथ, जिनके अथक प्रयासों ने गंगा को धरती पर लाकर एक तरह से अमरत्व पाया। तो सच्ची उपासना और उससे प्रेरित कर्म जो हैं, वो व्यक्ति के प्रभाव और उसके सार को कालजयी बना देते हैं, समय के पार ले जाते हैं।
इन तीनों प्रतीकों कल्प वृक्ष, पारस और अमृत को समझने के बाद ये सवाल उठता है कि भाई इन गहराइयों तक पहुंचने वाली सच्ची उपासना या अध्यात्म आखिर है क्या? अगर ये सिर्फ रस्में नहीं है तो फिर क्या है?
हाँ, यही पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन का मर्म है। वो जोर देते हैं आंतरिक शुद्धि पर, मतलब मन के मैल, कषाय, कलमश, इनको धोना, निर्मल बनना, और सबसे महत्वपूर्ण पात्रता विकसित करना।
पात्रता मतलब?
मतलब खुद को उस कृपा को ग्रहण करने लायक बनाना, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है करुणा का विकास, दूसरों के दुख को अपना समझना, महसूस करना, और सिर्फ महसूस नहीं, उसके निवारण के लिए सक्रिय होना।
अच्छा, एक्शन लेना।
जी, जैसे वो ब्राह्मण का अपनी इकलौती रोटी भूखे चांडाल को दे देना, या संत एकनाथ का प्यासे गधे को गंगाजल पिला देना। पूज्य गुरुदेव इसकी तुलना उस निष्ठुरता से करते हैं जहां कोई जरूरतमंद की आंखों के इलाज को नजरअंदाज करके अपने लिए महंगी अंगूठी खरीद ले।
ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी क्रियाएं हैं, जा पूजा तिलक वगैरह, अगर अंदर बदलाव और करुणा का प्राण उनमें नहीं है तो वो सिर्फ एक खाली लिफाफा है या जैसे बेजान लाश।
आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सटीक। पूज्य गुरुदेव जू और खटमल का बड़ा मजेदार लेकिन सटीक उदाहरण देते हैं।
हाँ हाँ।
कि वो शरीर से छिपके रहते हैं पर क्या करते हैं, खून चूसते हैं, पर जीवी है वो। सच्ची उपासना या निकटता ऐसी शारीरिक समीपता नहीं है, वो तो भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। ये ईश्वर के गुणों को जैसे पवित्रता, न्याय, करुणा, सेवा, इनको अपने जीवन में उतारना है। ये शबरी या विदुर की पत्नी की तरह लोक हित में खुद को समर्पित करना है। असल बात अपनी सोच, अपने चरित्र और अपने कर्मों को बदलने की है।
तो संक्षेप में कहें तो पूज्य गुरुदेव का सार यही लगता है कि सफल उपासना केवल मशीन की तरह रस्में निभाकर फल की उम्मीद करना नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये पवित्रता, करुणा और सेवा की दिशा में एक गहरा, एक आंतरिक रूपांतरण है।
एकदम सही कहा। असली चमत्कार कोई बाहरी जादू टोना नहीं है, वो तो आंतरिक कायाकल्प है। वो बदलाव जो व्यक्ति को कृपा का पात्र बनाता है और समाज के लिए प्रभावशाली कर्म करने की शक्ति देता है।
और इस कायाकल्प का रास्ता
आत्मशुद्धि और निस्वार्थ सेवा से होकर ही जाता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है।
पूज्य गुरुदेव के इस गहन संदेश से एक विचार मन में उठता है कि अगर सच्ची उपासना ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारना है तो आज के समय में हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सक्रिय करुणा को कैसे विकसित कर सकते हैं।
हाँ, ये बहुत प्रासंगिक सवाल है।
कैसे हम केवल निष्क्रिय प्रार्थना से आगे बढ़कर सक्रिय सेवा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।
बिल्कुल, सोचने और अमल करने दोनों की जरूरत है।